और सभी बाल संपर्क परिचार सब लोगों ने राजनीति परिक्रमा
वो भी मालपुआ इत्यादि खाते हुए छपड़ों में बैठ करके वृद्ध और बालक समर्थमान ऐसे लठिया लेते हुए गिरिराज जी का कीर्तन करते हुए उसकी परिक्रमा की। इस उपाख्यान में यह चीज दिखलाया गया है, यत्किं चित्रण गल्मकी कठमुखम गोष्ठे समस्तं हितत सर्वानंद मुकुंद दैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रे मुहुर मुहुर निष्टंकितं ज्ञानच्या ब्रह्मादेर पिशस्पि हंततो सर्वं मयायतं वर्यते। इस उपाख्यान में विशेष करके श्रीमद् भागवत में ये बतलाया गया, जो राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, जो कृष्ण की उपासना करते हैं, ब्रज में रहते हैं, उनको किसी भी देवता देवी की उपासना नहीं करनी चाहिए। पहले ब्रज में इंद्र की उपासना होती, दुर्गा की उपासना होती, गणेश जी की उपासना होती, शंकर जी की उपासना होती और देवताओं की भी उपासना होती थी, किंतु कृष्ण ने ये सबको उन लोगों से छुड़वाया। क्यों? ब्रज में एक तिनका भी है, वो गणेश जी से कोटि गुण बड़ा है। एक तिनका भी, एक बिच्छू, वो गणेश दुर्गा इत्यादि से बहुत बड़ा है। इस चीज को समझना चाहिए। यत्किंचित् तृणम् गुल्म कीकटमुखम् गोष्ठे समस्तं हितर। इस ब्रजमंडल में 84 कोष के अंदर में एक तृण, सर्प, वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि की, शंकर, ब्रह्मा इत्यादि देवता लोग ही नमन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जे कृष्ण का प्रेम हमें मिले। गणेश जी, यहाँ तक कि हनुमान जी जो शंकर के अवतार हैं, ब्रज में उनका कोई स्थान नहीं है। यदि होगा तो गोपीश्वर महादेव के रूप में हनुमान आएंगे, हनुमान के रूप में गदा धारण कर ये नहीं आएंगे, लोगों को पहन करके नहीं आएंगे, उनके लिए मना, वो खुद ही नहीं आए। इसलिए ब्रज का, ब्रज में इंद्र, इंद्र की पूजा होती थी। यदि मेरी मैया या बाप हो, मेरी माँ हो और माँ बैठी हो और एक बार बनीता आपका वेश्या माँ के सामने बैठा करके उसकी पूजा करें तो माँ के लिए अच्छा लगेगा? विचार करो, एक राष्ट्रपति है, उसके सामने एक चौकीदार की पूजा की जाए तो राष्ट्रपति का अपमान है या क्या है? इसलिए जितने भी सेवक हैं कृष्ण के वृंदावन में, ब्रज में, बैकुंठ इत्यादि, इंद्र का वहां कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत के अंदर में कहीं भी गणेश इत्यादि की वंदना नहीं आई। यदि आई है तो कात्यायनी के लिए आया। ये कात्यायनी कौन है? वो कृष्ण ही कात्यायनी के रूप है, जोग माया पूर्णिमा है, वो दुर्गा नहीं मत समझिए। ये राधा जी की छाया है, जैसे सीता जी को रावण चुरा करके ले गया, वो असल सीता नहीं थी, वो छाया सीता थी। ठीक उसी प्रकार से राधा जी की छाया का नाम ये दुर्गा है। कात्यायनी राधा जी स्वयं ही राधा जी का प्रकाश है। इसलिए वृंदावन में, ब्रज में किसी भी दूसरे देवताओं की उपासना नहीं होगी। क्यों? शंकर जी यहाँ पर द्वार रक्षक होकर के बैठे हैं, ये मथुरा में पीपलेश्वर महादेव विश्राम घाट के पास, अभी यहाँ पर रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, पीपलेश्वर महादेव, वृद्ध शिव इत्यादि शंकर जी दरबान बन करके बैठे हैं जिनके धाम की रक्षा करने के लिए। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव धाम रक्षक के रूप में है, जो दुष्ट लोग वहां पर प्रवेश न कर सके, अपनी पूजा ग्रहण नहीं करते, इसलिए और देवताओं की तो बात क्या, लोग नहीं समझते हैं इस विषय को, इसलिए वृंदावन के एक तृण की भी उपासना जो कृष्ण की सेवा के लिए है, ये और सब देवताओं से कोटि गुण श्रेष्ठ है, इस चीज को समझिए। इसलिए ब्रह्मा जी की सब लोग पूजा करते थे, ब्रह्मा जी अभी बतलाया गया होगा जे कैसे उनके बछड़ों को और बच्चों को हर ले गए, वो ब्रह्मा जी ने बल्कि कृष्ण ने ही योग माया के द्वारा हरवा लिया और उनका भी मान चूर्ण कर दिया, उनको ऐसी अद्भुत लीलाएं देखी जो उनके चरणों में वो लुढ़क गए, प्रार्थना करने लगे बहुत से जे मैं वृंदावन में किसी भी एक की चरण की धूली पाने के लिए वृंदावन में कहीं भी एक पत्थर भी जन्म लूं जिस पर मैला कमाने वाली, टट्टी कमाने वाली जमदरनिया सो पैर घिस करके धोती है वो भी बन जाओ, ये ब्रह्मा की स्थिति। जो सबको नचा देता है कामदेव, उसको भी नचा दिया कृष्ण ने रासलीला में, अभी आगे का प्रसंग में आएगा। इसलिए गिरिराज जी को ऐसा तैसा मत समझिए, गिरिराज जी कृष्ण के स्वरूप हैं, कृष्ण से जो मिलेगा ये भी दे देंगे। और दूसरी बात, उनका एक और स्वरूप है भक्त स्वरूप, सेवक स्वरूप, वो कृष्ण स्वरूप से भी बढ़ करके है, भगवान स्वरूप से राधा जी के चरणों में यदि प्रीति होगी तो कृष्ण से जो नहीं मिल सकता उसको राधा जी जैसे देती हैं, ऐसे ही भगवान जो नहीं दे सकते उनके भक्त लोग उनको दे देंगे, कृष्ण अपने को जो देते हैं आंशिक रूप में देंगे, और जब भक्त उनको देता था संपूर्ण रूप से उनके वो हो जाते हैं, ये विशेषता है। इसलिए गिरिराज जी का भक्त स्वरूप ही भक्तों को प्यारा है। यदि कोई गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करता है और यदि पेड़ों की डालों में पेड़ की डाल बांध देता है तो समझो ये विवाह की इच्छा है, गिरिराज कहते जाओ तुम्हारा जल्दी से विवाह हो जाए। यदि कोई धन की लालसा करता है, बड़े भवन की लालसा करता है, वो ईंट पर ईंट पत्थर पर पत्थर सजा देता है ये इतने तले का बिल्डिंग हमको जाए, कहे जाओ। कोई मुक्ति चाहता है तो जाओ, बैकुंठ चाहता है तब भी जाओ, जाओ सब हो जाए। और यदि किसी ने अपने मन में के अंदर में रख लिया कोई गूढ़ विषय, ये हमारी पूर्ण होनी है और बतलाता नहीं है, भीतर ही भीतर रखता है, तो उसके पीछे पीछे गिरिराज जी किसी न किसी स्वरूप से जरूर चलते हैं। और जब किसी प्रकार से कीर्तन में व्यक्त हो जाए, श्लोक में स्तव में व्यक्त हो जाए, किसी न किसी रूप से यदि व्यक्त हो जाएगा तो उसकी इच्छा को वो जरा गंभीर रूप से विचार करके देते हैं। कृष्ण का प्रेम, विशेष करके गोपियों जैसा प्रेम, इसको बड़ी सावधानी के साथ में देते, जहां तहां नहीं देते, इससे उनको वशीभूत हो जाना पड़ता है, इसलिए इस चीज को बहुत सावधानी के साथ। बस एक तमन्ना यदि रहे, मैं राधा जी की नित्य किंकरी बन जाऊं, जो कि कृष्ण भी सहज नहीं देंगे, यह राधा जी के हाथ में है, इसको भी गिरिराज जी अनुग्रह करके देते हैं। आप लोग इससे घटिया नीचे की चीज कोई नहीं उनसे मांगे, धन आज है, सौंदर्य आज है, कल संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, कल परसों खत्म, इसलिए ये सब चीजें नहीं, इसलिए ये सब गिरिराज जी से मांगना चाहिए। इसलिए आज गिरिराज जी का ये अन्नकूट हुआ और उसमें ये सब प्रसंग बतलाया गया। इसलिए गिरिराज जी का दो स्वरूप, अभी जो बाल गोपाल की मंदिरों में गिरिराज जी की शिला करते हैं पूजन, उसको कृष्ण का स्वरूप मानिए, और यदि उसमें वो कौन सा
गुंजामाला
लगा दो तो राधा और कृष्ण दोनों मिलित हो जाएंगे। इसलिए वो जो कुछ मांगो देंगे, किंतु संसार चीज मत मांगो, किंतु उसे भी अधिक देंगे यदि कृष्ण का भक्त मानो। बल्कि ब्रह्मा शंकर और लोगों के ये सौभाग्य में नहीं है, जे कृष्ण की जो गहन लीलाएं हैं, रहस्यमय लीलाएं हैं, जो गोवर्धन की कंदरा में होती है, जहां पर पुरुषों का कोई भी पुरुष का कृष्ण के अतिरिक्त अधिकार नहीं है, गिरिराज अपनी कंदराओं में कुंज इत्यादि लगा करके सुंदर सुंदर और सब अद्भुत विहार की चीजें रख करके और उनको नित्य क्रीड़ा कराते हैं। यह दूसरों के लिए संभव पर नहीं है। प्रेम का अंतिम प्रकाश जो राधा जी में है, वो सबको ये साक्षी हैं। इसलिए गिरिराज जी कृपा करके हमें अपना वह प्यारा धन हमें दें जो उनको सबसे अधिक प्यारा है। आप लोग भी इसी चीज को चाहेंगे। वो प्यारा धन क्या है? राधा जी की दासी होना। गिरिराज जी आप लोग जानते हैं, हनुमान जी पहाड़ ला रहे थे रामेश्वर के लिए, पुल बंद रहा था, किंतु जब पुल बंद गया तो इन्होंने और एक काशी वाले ब्राह्मण वो काशी को सुंदर बनाने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए इसको ले जा रहे थे, उसे पिता से मांग। गिरिराज जी ने ऐसी की जो यहाँ पर वो अशुद्ध हो गए, उनको रख दिया, इसके बाद में उठे नहीं। उन्होंने अभी संपात कर दिया, जाओ तुम दिन दिन तुम छिड़ होगा, कह जाइए ये ओ मस्तु ये ठीक है, किंतु कृष्ण के धाम को छोड़ करके मुझे जाना कहीं ठीक नहीं गए। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं रुपए पैसे के लिए ब्रज को छोड़ करके बंबई में और कहां कहां पर जाए, और हम लोग घर बार स्त्री पुत्र परिवार छोड़ करके गिरिराज जी की शिला में बैठना चाहते हैं। हम लोग का चलता नहीं है वहां पर, जो बैठे हुए उनका चलता नहीं है, क्या जरूरत है ऐसे वृंदावन में जन्म, गिरिराज जी के ऊपर तलाटी में जमुना जी के गोदी में हम लोगों का जन्म और यहाँ पर रहने वाले, दो पैसे ठीकरे के लिए हम इस देश को छोड़ करके जाएंगे फदेशों में, मगध और कहां कहां जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, नहीं। इसलिए गिरिराज जी की महिमा समझनी चाहिए। दूसरी बात आप लोगों से ये बतलाता हूं, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ ना? भागवत में भी ऐसा लिखा गया ना? भागवत में कहते हैं वसुदेव गृह साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यते। साक्षात वसुदेव जी के घर में कृष्ण परम पुरुष, साक्षात माने एकदम साक्षात कृष्ण, भगवान पुरुषा पर ये वहां पर उत्पन्न होंगे, प्रकट होंगे। देवक्यां देव रूपिण्या विष्णु सर्वगुहाश आदिराशीद जथा प्राच्यो दिशिंदी मीय पुष्कर। जैसे पूर्व दिशा से सूर्य उगते हैं, ऐसे देव देवकी जो देव रूपिणी है उसे विष्णु सर्वगुहाशय कृष्ण आविर्भूत हुए। और भी सुतम विलोक्य आनक द्वंद भी, जब वसुदेव जी ने देखा, अरे देवकी के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए एक 16 वर्ष का श्यामला सा पुत्र, अद्भुत शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, केश लंबे लंबे घुघराले और समस्त अलंकारों से किरीट इत्यादि से सुशोभित और बड़े बड़े केश इत्यादि पीतांबर पहना हुआ ये प्रकट हुआ। अरे गर्भ से ऐसा कोई लड़का गिरता है आता है? किंतु उन्होंने कहा अरे ये तो हरि आए हैं, पूर्व जन्म की बात याद आ गई, जो भगवान ने स्वयं इन्हीं भगवान ने हमको ये आश्र ये दिया था, बर दिया था, तुम्हारे घर में पुत्र रूप से जन्म लूंगा, इसलिए इनके पुत्र हैं। और भी सुतम जसोदा शयने निधाय आनंद भी, अर्थात वसुदेव जी ने गोदी में ले लिया जमुना को पार कर आधी रात में, और जा करके अपने बेटे को रख करके और एक लड़की को वहां से उठा करके लेकर के चले। यशोदा जी को पता नहीं क्योंकि वो मीठा मीठा गर्म। ऐसे ये सब प्रमाण मिलते हैं जिससे कि कृष्ण का जन्म मथुरा में जेल खाना में हुआ। इसलिए जितने मथुरापुरी के या जगत के लोग हैं सभी लोग कहते हैं कि कृष्ण का जन्म, मैं समझता कि आप लोगों में से अधिकांश यही सुने होंगे कि कृष्ण का जन्म। अच्छा जरा हाथ उठाइए तो देखिए ना, अधिकांश लोग कहेंगे ये मथुरा में हुआ। हमारा भी बाएं हाथ उठा, दाएं हाथ नहीं उठा। अच्छा अब एक देखो, अच्छा सुखदेव गोस्वामी को छोड़ दीजिए, मथुरा के जितने बड़े बड़े विद्वान हैं वो कहते हैं मथुरा में जन्म हुआ। यहां तक कि ब्रह्मा भी कहे ये मथुरा में जन्म हुआ, शंकर जी भी कहते हैं कि ये मथुरा में, नहीं कहते तो भी मैं मान लेता हूं। जितने विश्व के लोग हैं कहे थे ये मथुरा में जन्म हुआ, और यशोदा जी कहती हैं कि वृंदावन में हमारे कोख से ये जन्म हुआ। अच्छा आप बतलाओ जे किसकी बात प्रमाणिक है? जिसने गर्भ में धारण किया, जिसे घर से निकला उसकी बात सत्य होगी, जो सुन करके कान से दूसरी जगह से सुन करके प्रार्थना करके और दूसरी जगह से बात सुनता, किसकी बात हम सही मानेंगे? तो हम देखते हैं जिसने गर्भ धारण किया, जिसने गर्भ धारण किया वो कहती है अरे हमारे गर्भ से ये पैदा हुआ, तो उसकी बात झूठी हो जाएगी मैया की बात, और गांव वाले दूसरे गांव वाले के वो भी वृंदावन वाले नहीं दूसरे जगह के कर रहे हैं, ये नहीं ये मथुरा में। अच्छा दूसरी बात, यशोदा जी की जितनी भी ब्रज की सहेलियां थीं, यशोदा जी तो गर्भ के समय में कुछ सो रही थी मीठी नींद में, किंतु उनकी जो दाइयां थीं और उनकी जो सहेलियां थीं, उनकी जो सहेलियां थीं वो जिन्होंने देखा जे गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ, अच्छा वो झूठ बोल सकती हैं? इसलिए ब्रज की कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी बालक उससे पूछे तो वो क्या कहेगा, कहाँ जन्म हुआ?
यशोदा के गर्भ से।
अच्छा इन सब में प्रमाणिक कौन है? जो यशोदा जी प्रमाणिक है, नंद बाबा जी हैं, न सहेलियां हैं न वसुदेव देव की है, कौन प्रमाणिक है ऊंचे पद पर?
यशोदा
मैया है, गोपियां हैं जो ना अपनी आंखों से देखा। दूसरी बात एक और, ये मथुरा में उनका गर्भ का ये हुआ था,
जात संस्कार,
जात क्रिया एक होती है,
जात कर्म संस्कार,
जात कर्म संस्कार होता है, जात संस्कार नाड़ी छेदन से पहले होता है, जात कर्म माने वो दाइयां आती हैं उनको स्नान कराती है और ब्राह्मण लोग आकर के उसे फूल इत्यादि देते हैं, उसे पवित्र करते हैं, इसके बाद में दाई आती है और नाड़ी छेद करती है। मथुरा में नाड़ी छेद हुआ तो यहाँ कैसे जन्म हुआ? नाड़ी छेद कहाँ हुआ?
यहाँ जन्म हुआ था,
वहां पर हुआ गोकुल में, और नाड़ी छेद हुआ किसे? कृष्ण और यशोदा मैया के बीच में। तो लोग कैसे कहते हैं यहाँ? अरे यहाँ तो उन्होंने ये प्रकट हो गए वो भी नारायण के स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में, वहां दुभिज बालक हुए जो बंशीधारी जो कृष्ण है, मोर मुकुट को धारण करने वाले गोपी कांत जो राधा कांत जो कृष्ण है वो गोकुल में पैदा हुए, यहाँ पर अंश में हुए वहां पर पूर्ण रूप से। इस चीज को समझना चाहिए, ये भी सत्य है कुछ हद तक मथुरा में जन्म लिए, किंतु ब्रजवासी हम लोग कभी भी कदापि नहीं इसको स्वीकार करेंगे जो वसुदेव जी को बेटा हुआ और वहां ले गए और बेटी को ले आए और उनका हो गया। अच्छा मान लिया, सब प्रकार से हमने मान लिया ये यहाँ पर मथुरा में ही उनका जन्म हुआ और वसुदेव जी वहां पर ले गए, बेटी को ले आए, बेटा को रखा है। अब ये होता है तकाजा कानून का, उसके बेटी को लौटा दे, बेटा को ले आए। बेटी कभी लौटाया? लौटाया नहीं, तब उनका अधिकार कैसे? इसलिए वो कहने का अधिकारी नहीं है, मैं तुम्हारा बाप हूं, इस चीज को समझो। बेटी कभी नहीं लौटाया, क्यों? वो तो कंस के हाथों में आकर के उससे छलांग मारी और कंस के सिर में ठुकराया, पैर से वो मूर्छित होकर के गिरा, दिखा रही ये तो मेरी अष्टभुजा देवी है। और काजे तुम्हारा जो हंता है वो दूसरी जगह जन्म ले लिया, तो ये उसकी आराध्या देवी दुर्गा देवी खुद कह रही है कि दूसरी जगह जन्म ले लिया, पैदा हो गया। तो पैदा कहाँ हुआ? मथुरा में होना, दूसरी जगह? वो दूसरी जगह कहाँ है?
मथुरा छोड़कर और कहीं होगा।
ये गोकुल हुआ, वो असली वहां पर जन्म हुआ, यहाँ पर आविर्भूत हुए। जैसे खंभे से प्रहलाद नृसिंह देव निकला, तो प्रहलाद उनकी नृसिंह देव की मैया या बाप कौन है? खंभा है। कोई कहता है कि नृसिंह देव के बाप या मैया खंभा है, कोई कहता है ब्रह्मा जी के नाक से बरादी पैदा हो, तो कोई कहता है ब्रह्मा जी की नाक उनकी बामन देव जी की उनकी मैया है, कोई कहते हैं बरादेव का। इसलिए ऐसा नहीं। अच्छा एक और दूसरी बात, एक और नई चीज सुनो। ये नंद जी के लिए और यशोदा जी के लिए कहा गया है, बहुत पहले सतयुग के प्रारंभ में एक ये थे
द्रोणधर,
हाँ एक राजा थे, उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। धरा माने ये पृथ्वी, द्रोण माने पर्वत। इन लोगों ने बहुत आराधना की। जब इन लोगों ने आराधना की तो वहां पर ब्रह्मा जी आए, इन लोगों ने वर मांगा। भगवान के प्रति हम लोग का प्रेम, पुत्रवत प्रेम, पुत्र हमारे हैं, तो यदि ब्रह्मा जी ने वर दिया या भगवान ने ही वर दिया और उन्होंने कह दिया एवं मस्तु ऐसा ही हो, तो यदि केवल मात्र मथुरा में ही जन्म लेते हैं तो फिर उनको वरदान का क्या फल मिला? किसको? नंद बाबा और यशोदा जी के गर्भ से ये पैदा होंगे, ये बात तो रह गई थी, इसका वरदान तो उनको मिला नहीं, मिला तो वो पूरा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये नंद बाबा के, तब ऐसा सोचो एक पैसा देवकी और वसुदेव के पुत्र है और 100 पैसा यशोदा और नंद बाबा के। इसलिए जितनी प्रेम की लीलाएं ब्रज में हुई वो कहां हुई? ब्रज में। मथुरा में कृष्ण ने कंस को मारा, बस यही उपनयन हुआ। द्वारका में जाकर के बहुत से रानियों के साथ में शादी की और असुरों का संहार किया। प्रेम की जो वृंदावन में जो लीला हुई, रासलीला इत्यादि हुई, और यहां तक कि गोपियों के चरणों में अपने सिर को नतमस्तक कर दिया कृष्ण ने भगवान होते हुए, ये सब लीलाएं कहां हुई? इसलिए कृष्ण प्रेम को देने वाले हैं और जब तक कि गोपियों के साथ में ऐसा संबंध से कोई प्रार्थना नहीं करेगा तो वो चीज नहीं देते हैं। इसलिए समझेंगे कि ये यशोदा और वसुदेव नंद बाबा और यशोदा जी के ही पुत्र हैं, यदि ब्रज का भाव आपके अंदर में है। और वहां पर कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए और फिर उसी प्रकार से यहां से चले गए भी गए, मधुर लीलाएं यहां पर नहीं। इसलिए आप लोग इसी रूप में कृष्ण की आराधना करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने अभी सुना राधा दामोदर जी की लीला या जसोदा दामोदर जी की लीला, लीला आपने सब सुना। जसोदा माँ कृष्ण को बांधने जा रही है, ब्रज की सारी रस्सियों को मंगाया, जोड़ती चली गई और कृष्ण की कमर बांधती चेष्टा की, प्रत्येक बार दो अंगुल कम हुआ। पहले जब अपने सिर के बांधने की चोटी से अपनी चोटी बांधने वाली वो पाट की रेशम की जो डोरी थी उसे बांध, नहीं भाई दो अंगुल, एक और रस्सी मंगाई, दो तीन चार पांच, ब्रज की सारी रस्सियां मिलो लंबी हो गई और प्रत्येक बार बांधती दो अंगुल कम हो जाए। आश्चर्य कभी शायद तीन अंगुल चार अंगुल नहीं, एक अंगुल नहीं, बस दो ही अंगुल। क्यों? कृष्ण स्वयं भगवान है, उनको कोई रस्सी बांध नहीं सकती, यहां तक कि ऐश्वर्य से बंधी हुई बैकुंठ की रस्सी उनको नहीं बांध सकती, उनको बांधेगी ममता की रज्जु। कैसी ममता? यशोदा जी जैसी ममता हो, नंद बाबा जैसी ममता हो, सर्वोत्तम ममता हो ललिता विशाखा जैसी, उससे भी यदि श्रीमती राधिका जैसी ममता हो। कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं, गोवर्धन गिरिराज के पास ही, वहीं पर चंद्र सरोवर है, वहीं पर पैठा गांव है, चतुर्भुज लेकर के खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म, गोपियां उनको खोज रही हैं, देखा जी शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वैसा ही धारण करके कोई खड़ा है, प्रणाम किया और चली गई। किंतु राधा जी जो आ रही है खोजते खोजते, उनकी गंध पा करके उनके हाथ दो चले गए और बंसी इत्यादि सब आ गई, मोर मुकुट आ गया, अपने को भूल गए, संभालना भी भूल गए। ऐसी ये गोपियों की महत्ता है, इसलिए अकेले कृष्ण की उपासना की अपेक्षा राधा जी के साथ में कृष्ण की उपासना हो, ये सर्वोत्तम उपासना है। दो अंगुल कम कम पड़ती है, यदि आप अपने मन से लाख आराधना करें, मंत्र करें, यज्ञ करें, आजकल एक यज्ञ हो रहा है न जाने क्या, 1008 न 108 कुंडियों में ये सब गायत्री यज्ञ इत्यादि हो रहा है। श्रीमद् भागवत स्पष्ट रूप से बोलते हैं, गीता स्पष्ट रूप से कहती है, यज्ञ दान तप तपस्या ध्यान इत्यादि से भगवान नहीं मिलते, एक बार प्रेम से मिलते हैं, प्रेममयी आराधना हो इससे मिलेंगे, इसके अतिरिक्त नहीं मिल सकते। तो ये सब चीजों के तरफ आप लोग मत जाएंगे, तो वो दो अंगुल क्या क्या है? ममता युक्त प्रेम, भगवान कृष्ण है ये बात है, ठीक है। यशोदा जी को गर्ग जी ने कहा था जी ये भगवान ही के समान है, और कृष्ण ने अपने मुख में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड समस्त देवताओं को उन्होंने दिखलाया, इनको विश्वास नहीं कि ये कृष्ण भगवान है, कहे मेरा बच्चा है। उन्होंने स्तव स्तुति अर्जुन की भांति नहीं की, उन्होंने कहा जिसको कुछ ने नजर लगा, बस इतना ही, इसको नजर लगा दिया या मुझे नजर लगा दी, ये भगवान है उनके समझ में नहीं आया। इसलिए यशोदा की ममता इतनी अधिक है कि कृष्ण को अपना बच्चा मान करके उसको शासन भी करती हैं, ये बिगड़ न जाए उस ब्रह्म को भी देखती, उतना 60,000 हाथियों का बल लेकर के अपने स्तन से कृष्ण को अलग नहीं कर सकी, और यशोदा जी का स्तन कृष्ण पान कर रहे हैं और वो खूब पकड़ रखे हैं, अपने पैरों से पकड़ रखा, मुख से पकड़ लिया, अपने हाथों से बंदरों जैसे पकड़ लिया यशोदा जी को, नहीं छोड़ेंगे। और यशोदा जी देख रही है दूध औटा रहा है एक चूल्हे पर, कृष्ण से कहा जैसे बैठ यहाँ, तो पकड़ लिया जोर से, अभी भूख पूरी नहीं हुई थी, किंतु यशोदा जी ने क्या किया, झटका दे, अरे बैठ यहाँ, एक सेकंड में नहीं लगा और उसको बैठा दिया, और वो दांत कड़मड़ी करते रह गए। पर ब्रह्म का वो जो शक्ति थी वो समझाने कहाँ चली यशोदा जी के सामने, ठहरो यहाँ पर बैठो। और इसलिए यशोदा जी की ममता ही, ऐसी ममता यदि कृष्ण के प्रति किसी की हो तो वो कृष्ण को बांध सकता है, अन्यथा नहीं। भीष्म की प्रतिज्ञा से वो नहीं बंधेंगे, अर्जुन उनको नहीं बांध सकेंगे, और कोई भी नहीं बांध सकता, ये मैया बांध सकती है। और उस बंधन को केवल उसके बाप ही नंद बाबा ही वसुदेव नहीं खोल सकते, लाख चेष्टा करेंगे और देवकी और वसुदेव नहीं खोल सकते, और उनके बंधन में भी नहीं आएंगे, उनके प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं हो सकते। इसलिए दो चीज है, एक अपनी चेष्टा, अरे भाई उसमें कल्याण में लिखा है जो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे, इसके मंत्र करने से हो जाएगा, नहीं होगा लाख जन्मों में भी। सदगुरु से मंत्र लेकर, शब्द ब्रह्म लेकर, गले में तुलसी लेकर, जैसी उचित रीति है उस उचित रीति के सही कृष्ण को अपना मानकर, अपना बेटा मानकर, अपना सखा मानकर, अपना सबसे सर्वोत्तम भाव प्रियतम मान करके, गोपियों की जैसे प्राण बल्लभ है हमारे प्राण बल्लभ ये कृष्ण है, ऐसा मान करके यदि कोई आराधना करेगा तो उसके वशीभूत हो सकता है। ये दो चीज हुई, एक अपनी चेष्टा, लाख चेष्टा अपनी करो नहीं बंधेंगे, जब तक कि उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक बंधन में नहीं आएंगे, उनकी कृपा होनी चाहिए। तो एक है अपनी चेष्टा एक अंगुल, और दूसरी अंगुल क्या है, कृष्ण की कृपा, दोनों जब मिलेगी तो वो बंधेंगे। तो कृष्ण की कृपा कैसे होगी, साधन करो, ऐसा साधन करो जो कृष्ण देख करके ये समझ सके, ओह हमारे लिए इतना कष्ट करती है या करता है, उनकी उनका चित्त द्रवित हो जाए। यशोदा जी ने कहा अभी सवेरे से शाम तक बांधूंगी, कल बांधूंगी, परसों बांधूंगी, बरसों बांधूंगी, बांध करके ही रहूंगी, अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, नहीं सोऊंगी, नहीं विश्राम करूंगी, सब घर का काम छोड़ दूंगी। बांधते बांधते उनके केश सब बिखर गए, बंधन केश का खुल गया, चोटी खुल गई, मुख में लालापन आ गया, कुछ क्रोध सा भी आया, कुछ रोष भी आया, मैं अपने बेटे को नहीं बांध सकती, और ये गोपियां ताली बजा रही हैं, देखो तो ये बांध नहीं सकती, और लज्जित हो गई। उस समय में कृष्ण को दया आई, पसीने से तरबर हो गई, मुख विवर्ण हो गया, किंतु प्रतिज्ञा में बांधूंगी जरूर। उनका परिश्रम देखे कृपया सी तुष बंधने, स्वयं कृपा से उनके बंधन में आ गए, उनको कोई बांध नहीं सकता। इसलिए ऐसा साधन करना है गिरिराज जी के अनुगत्य में, ऐसे जो तत्वी अनुभवी भगवान को रियलाइजेशन करने वाले, अनुभूति करने वाले, रसी शास्त्रों का तात्पर्य जानने वाले, और स्वयं साधन भजन से कृष्ण को वशीभूत करने वाले ऐसे यदि गुरु हो तब तो कृष्ण को हम भजन करके उनको बांध सकते हैं, अन्यथा नहीं बांध सकते हैं। इस चीज को समझ रखना चाहिए, जैसे तैसे हारमोनियम बजाने वाले गुरु से कृष्ण नहीं मिलेंगे, पान बीड़ी सिगरेट खाने वाले संसार में एकदम फंसे हुए ऐसे लोग, गृहस्थ भी हैं वो संसार में नहीं फंसते हैं, ऐसे भी भक्त लोग हैं जैसे हनुमान अर्जुन इत्यादि थे, अम्बरीश महाराज इत्यादि थे, प्रहलाद महाराज थे, ये भक्त हैं। किंतु ऐसा होना तत्पक हो, रसिक हो, भागवत का जानने वाला हो, हमारे कान के मैले को दूर करके के कृष्ण के प्रति ऐसी रसमयी भक्ति हमारे हृदय में संचरित कर दे, तो ऐसे गुरु से होगा, अन्यथा कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे। इसीलिए बतलाया गया एक बंदर होता है एक बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके मुंह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाती, बच्चा म्याऊ 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 करता रहता है, किंतु वो उसको पकड़ करके ले जाती, वो खुद नहीं चलता बिल्ली का बच्चा, बस रोता रहेगा। और इधर बंदर का बच्चा मैया आकर के खड़ी हो जाएगी, कहीं छलांग देना है, वो बच्चा खुद करके उसे पकड़ लेगा, अपने पैरों से अपने हाथों से पकड़ लेता है, और मैया वहीं से खुद जाती है, छलांग मारती है, मैया नहीं पकड़ती उसको, ठीक बिल्ली के बच्चे के विपरीत। ऐसे ही कोई साधक कहता है कि भगवान की कृपा होगी तो हम उनको मिल जाएंगे उनकी कृपा से, ये बिल्ली का बच्चा। और दूसरा साधक हुआ बंदा, हम अपनी चेष्टा से भगवान को पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु कहेंगे बीच के रास्ते में आओ, परिश्रम करो, चेष्टा करो भजन के लिए, निरंतर राधा कृष्ण का भजन करो और उससे तुम्हारे परिश्रम को देख करके कृष्ण की कृपा अपने आप हो जाएगी, तब दोनों मिल जाएंगे। इसलिए दोनों चीज होनी चाहिए। इसलिए साधन भजन के जो तरीके हैं, जो रहस्यमय तरीके हैं, उनको ऐसे गुरु से समझ करके और इस विषय में प्रवेश करके निरंतर भजन करना है। संसार तो दो दिन के बाद में खत्म भी हो जाएगा, यह संबंध कृष्ण का संबंध कभी भी समाप्त तो नहीं होने वाला है। जो सुखी और शांति होना चाहता है जगत में और परलोक में सुखी और शांति रहना चाहता है, उसको राधा कृष्ण का भजन करना चाहिए। अहित पुरुष में कोई संसारी कामना वासना नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज, बस राधा कृष्ण की सेवा हमें प्राप्त हो। कृष्ण कह जी और मांगो तो कहेंगे जी आपकी सेवा मिले, बस राधा जी की दासी बनाइए, बस इसके अस्तित्व और कुछ नहीं। ये भागवत का मैं सार बतला रहा हूं, जो कि सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बतलाया, जिसको हमारे परीक्षित महाराज जी ने अपनी मैया को बतलाया, नारद जी ने अपने शिष्यों को बतलाया, ब्रह्मा जी ने अपने नारद जी को बतलाया। ये परंपरागत धारा है। इसलिए भागवत सुनने के बाद में और कोई चीज बाकी सुनना नहीं रह जाता, इस चीज को समझो। भागवत जो है समस्त वेद उपनिषद सबका सार है, महाभारत का सार है। ऐसे भागवत को समझ करके भगवान के चरणों में चित्त लगाइए। ऐसे ही गिरिराज जी की उपासना करें, ब्रह्मा इत्यादि की नहीं, दूसरे देवताओं की नहीं, गिरिराज जी की करें, राधा कुंड की करें, जमुना जी को करें, वृंदावन में जाइए, मानसरोवर है वहां पर जाइए, भांडी वन में जाइए, एक तृण गुण लता को भी आप आराधना कीजिए, वो कृष्ण की भक्ति को देंगे, किंतु दूसरे की उपासना। एकांतिक हो, इसको कहते हैं एकांतिक कृष्ण का भजन। इसमें क्रमशः भागवत में इसी चीज को दिखलाएंगे, विशेष करके भागवत में इसके बाद ही ये दिखलाएंगे। अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार दी तिब्रेन भक्ति योगे न जगते और नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन निर्विद्यमानानां इच्छताम उक्तो भयम जोगी नाम निर्णितम हरे नाम। समस्त जितने प्रकार के साधन है उन समस्त साधनों में सद्गुरु की सेवा करते हुए राधा कृष्ण की उपासना करें। उनकी उपासना होती है नाम से, विशेष करके कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, कोटि कोटि उपासना ध्यान यज्ञ इसके पाषण में भी नहीं आएगा। इसलिए हरि नाम का सहारा लेकर के तुलसी इत्यादि गले में धारण कर करके, मांस मछली प्याज लहसुन इत्यादि सबको दूर कर करके, अखाद्य कुखाद्य को और भगवान का इस प्रकार से भजन करें, यही भजनों का सार है। आज यहीं तक मैं बकुल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ, अब शायद समय भी हो गया है। आज सप्तम दिवस मद्भागवत का चल रहा है, निर्विघ्न रूप से ये सब चीजें हो रही है। महिलाएं थोड़ा इधर आ जाए तो अच्छा, क्यों उस समय में खेलन बल में रह रहे थे और एकादशी के दिन में, कल एकादशी है कि परसों, परसों एकादशी, क्या चाहते हैं, वो समय खेलन बल में रहते थे, वो अपने छोटे भाइयों के और बड़े भाइयों के साथ में परिकरों के साथ में गंगा के किनारे जमुना के किनारे पहुंचे। अभी उस समय इस समय उसका नाम है भयगांव या नंदघाट। वहीं पर उन्होंने एकादशी का जागरण किया और जब सवेरा हुआ तो वो स्नान करने गए। एकादशी के दिन स्नान ये उपवास रहे और द्वादशी उन्होंने समझा जी अब द्वादशी लग गई, सोचा जैसे ये चार बज गया अब स्नान करना चाहिए और अपना नित्य कर्म संपादन करके राधा कृष्ण का अर्चन करके भगवान का और तब ही ब्राह्मणों को और सब लोगों को जैसा जो देना लेना खिलाना पिलाना है करा करके अपना व्रत का पारण करूंगा। आजकल लोग पारण जानते नहीं है, विशेष करके उत्तर प्रदेश के लोग पारण का कोई मूल्य महत्व नहीं देते, एकादशी भी नहीं समझते हैं जो कैसा एकादशी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो उस समय में जब स्नान करने गए तो उनके कुबेर के दूतों उनके वरुण के दूतों ने उनको रात में स्नान करने के कारण रात में ब्रह्म मुहूर्त से पहले स्नान नहीं करना चाहिए, चार बजे के बाद में स्नान करना चाहिए। रात में यदि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इत्यादि हो तो उस समय में स्नान कर सकते हैं, विशेष विशेष क्षेत्रों में सब समय नहीं करना चाहिए। पौधे भी दिन में जगते हैं रात में सो जाते हैं, इसलिए तुलसी महारानी को भी शाम के बाद में उसका चयन नहीं करना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं हटाना चाहिए, यहाँ तक कि ठाकुर मंदिर में भी नहीं ले जाना चाहिए तुलसी जी को, यह अपराध है, उनको हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, ये सबका विशेष रूप में रहना चाहिए। नंद बाबा को पकड़ कर ले गए तो सब लोग कह जाए नंद बाबा कहाँ गए, स्नान करने गए और उसी में डूब गए, फिर निकले नहीं, डुबकी लगाई। उसी समय कुबेर के दूतों उनके वरुण के दूतों ने उनको उठा करके ले करके वहां पर रख दिया, वरुण लोक में ले गए। जब वो सभी लोग रोने चिल्लाने लगे तो कृष्ण जी वरुण लोक में गए और नंद बाबा को वहां से ले आए। उस समय में बड़े आदर के साथ में वरुण ने कृष्ण की परिक्रमा की और उनको उपहार दिए और क्षमा मांगी। नंद बाबा ने देखा कि हमारे बेटे को ऐसे वरुण और जितने भी देवता इत्यादि इतना आदर करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनका गर्व से छाती फूल गई, बड़े आनंदित हुए, हमारे बेटे को इतना ही लोग सम्मान देते हैं, ये ही भगवान है क्या? कुछ क्षण के लिए ऐसी भावना है। इसके बाद में कृष्ण उनको लेकर के चले आए। भागवत में इसका उल्लेख है, नंद बाबा जसोदा मैया उपानंद सुनंद नंद इत्यादि जितने ब्रजवासी थे सभी लोग एकादशी व्रत करते थे, हम लोग को भी एकादशी व्रत करना चाहिए यदि भगवत भक्ति पाना चाहते हैं और जीवन में सुखी और शांति रहना चाहते हैं तो। किंतु इसमें एक सावधानी रखनी चाहिए, यह शास्त्रों के द्वारा वर्णन किया गया है, विशेष करके श्रीमद् भागवत में जहां एकादशी का की बात कही गई, कौन राजा अम्बरीश महाराज के प्रसंग में, दुर्वासा ऋषि जी के प्रसंग में, एकादशी में दसवीं नहीं मिली होनी चाहिए। यदि सारा दिन एकादशी हो और सवेरे में थोड़ी सी एक मिनट भी दसवीं उसमें लग गई, कब ब्रह्म मुहूर्त में भी सूर्य से उदित होने के एक घंटा 36 मिनट में यदि एक मिनट भी दसवीं है और सारी दिन और रात एकादशी है तभी नहीं करो,
या तो शुद्ध एकादशी हो, एकादशी न भी हो तो द्वादशी कर लो, कोई हर्ज नहीं। किंतु जैसे किसी के हृदय में कोई सूल ठोक दिया जाए, ऐसे ही एकादशी में यदि एक सेकेंड भी, दो मिनट, चार मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दस घंटा या जितना भी हो, यदि दसवीं रहेगी तो उस दिन व्रत मत करो। यहां पर यह विचार यहां के पंडित समाज नहीं करता, किंतु ये करना चाहिए, हमारी भारतवर्ष की संस्कृति का ये चीज है, नहीं विचार करते। इसलिए दसवीं से युक्त यदि एकादशी हो, एक मिनट भी दिन के अंदर में मिल जाए तो भी दसवीं वाली विद्या एकादशी मत करो, बल्कि दूसरे दिन, पहले दिन ऐसी एकादशी और दूसरे दिन द्वादशी आ गई तो द्वादशी का व्रत करो। ये महाद्वादशी फल हो जाता है, एकादशी का फल और द्वादशी का फल दोनों मिल जाता है। अम्बरीश महाराज ने ये द्वादशी व्रत किया था और इतने बड़े ब्राह्मण, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मयोगी, जो कि कहने से कोई आदमी मर जाता है, ये भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सके अम्बरीश महाराज जी का। और सुदर्शन उनको खदेड़ा भाग गए, ये मृत्यु से नहीं डरे अम्बरीश महाराज। इसलिए जीवन में यदि सुखी शांति होना हम चाहते हैं तो एकादशी व्रत जरूर प्रत्येक